एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार,
मैं हूं आपकी मेजबान। आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से उतरने वाले हैं जो हम सबकी डिजिटल जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, साइबर सुरक्षा।
बिल्कुल।
और इसके लिए हम डुआन सी विल्सन के काम, उनकी सोच, उनकी अंतर्दृष्टि का सहारा लेंगे।
हाँ, और ये विषय जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिये, अब ऐसा नहीं रहा कि साइबर सुरक्षा सिर्फ इंजीनियर या बड़ी कंपनियों की ही चिंता हो।
सही बात है।
हम सब मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऑनलाइन है। खरीदारी हो, बैंकिंग हो, दोस्तों से गपशप हो,
सब कुछ ऑनलाइन है।
हाँ, तो ऐसे में ये समझना कि इस डिजिटल दुनिया में कैसे सुरक्षित रहा जाए, ये बहुत बहुत जरूरी हो गया है।
और विल्सन का नजरिया यहाँ इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वो इसे सिर्फ एक तकनीकी चुनौती की तरह नहीं देखते।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो इसे जोड़ते हैं तकनीक से, इंसानी बर्ताव से, कंपनियों के काम करने के तरीकों से, और यहाँ तक कि जियोपॉलिटिक्स से भी।
सही का। तो चलिए थोड़ा पहले डुआन सी विल्सन को ही जान लेते हैं। कौन है ये और इनका नजरिया इतना अनोखा क्यों माना जाता है?
देखिए, विल्सन कोई सिर्फ किताबी बातें करने वाले एक्सपर्ट नहीं है। उनके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 2 दशक यानी 20 साल से भी ज्यादा का असल दुनिया का अनुभव है,
और वो भी बहुत विविध किस्म का। उन्होंने सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में काम किया है।
हाँ, उन्होंने अमेरिकी सरकार की एक नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए सीनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम किया।
सोचिए जरा, वहाँ वो देश के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड या कम्युनिकेशन नेटवर्क को बड़े सरकारी हमलों से बचाने की स्ट्रेटेजी बनाते थे।
और फिर वो प्राइवेट सेक्टर में आ गए, बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी यानी CISO रहे।
हाँ, जहां आपको बिजनेस की जरूरतों और सुरक्षा के बीच वो नाजुक संतुलन साधना होता है। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि उनके पास सिर्फ कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में भी डिग्री है।
एग्जैक्टली।
यही चीज उनके दृष्टिकोण को इतना मतलब गहरा बनाती है।
मनोविज्ञान भी, वाह।
हाँ, वो समझते हैं कि ज्यादातर साइबर सुरक्षा की विफलताएं वो तकनीकी खामियों से उतनी नहीं होती जितनी के मानवीय चूक से होती हैं।
ओह, अच्छा।
हमारी अपनी आदतें, हमारे व्यवहार के पैटर्न या फिर किसी कंपनी का अपना कल्चर, उसकी कमजोरियाँ इनकी वजह से ज्यादा होती हैं।
तो उनका मानना है कि साइबर सुरक्षा सिर्फ सिस्टम्स के बारे में नहीं है।
नहीं, ये इंसानी सिस्टम्स को समझने और मैनेज करने के बारे में भी उतना ही है। तकनीक और इंसान का वो जो इंटरेक्शन है ना, वही उनके विश्लेषण के केंद्र में है।
तो फिर विल्सन के काम का निचोड़ क्या निकलता है, उनका मुख्य तर्क क्या है?
देखिए, उनका मेन पॉइंट ये है कि साइबर सुरक्षा अब कोई वैकल्पिक चीज नहीं है, ये आधुनिक सभ्यता का एक कह सकते हैं बुनियादी स्तंभ है।
जैसे सड़क, बिजली।
बिल्कुल, जैसे वो जरूरी हैं वैसे ही हमारी डिजिटल दुनिया की सुरक्षा भी जरूरी है, और इसे ठीक रखने के लिए एक होलिस्टिक मतलब एक समग्र बहुस्तरीय नजरिया चाहिए। सिर्फ तकनीक से काम नहीं चलेगा।
तो वो इस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि बस एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल लिया और काम हो गया।
हाँ, वो कहते हैं ये सोच बहुत सीमित है। साइबर सुरक्षा एक गतिशील चीज है, ये लगातार बदल रही है। इसमें तकनीक, ह्यूमन साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सोच, इन सब का संगम है।
और फिर वो ये बड़ा सवाल उठाते हैं कि जब खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं,
रोज कुछ नया सुनने को मिलता है।
हाँ, तो ऐसे में हम मतलब व्यक्ति, संगठन और देश खुद को कैसे बचाएं?
और उनका जवाब है साइबर लचीलापन या साइबर रेजिलियंस की मानसिकता विकसित करने में।
लचीलापन मतलब
सिर्फ हमलों को रोकना ही काफी नहीं है, हमें ऐसी क्षमता बनानी होगी कि अगर हमला हो भी जाए तो हम उसे झेल सकें, जरूरी काम जारी रख सकें और जल्दी से जल्दी वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं।
गिरने के बाद उठ खड़े होना एक तरह से।
अच्छा, ये बात है।
और इसके लिए वो रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत जोर देते हैं, है ना?
बिल्कुल। जोखिम प्रबंधन यानी ये मानकर चलना कि आप हर हमले को रोक नहीं सकते, 100% सुरक्षा संभव नहीं है।
तो फिर?
तो आपको समझदारी से ये तय करना होगा कि कौन से जोखिम आप स्वीकार कर सकते हैं, किन को कम करने के लिए संसाधन लगाने हैं और किन के प्रभाव को सहने के लिए तैयार रहना है।
और वो उन 3 मूल सिद्धांतों की भी बात करते हैं, CIA ट्रायड।
हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी यानी गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता।
गोपनीयता मतलब जानकारी गुप्त रहे।
सही। इंटीग्रिटी मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ न हो।
और अवेलेबिलिटी मतलब जरूरत पड़ने पर वो मिल जाए।
हाँ, हर साइबर हमला इन्हीं 3 में से किसी न किसी पर चोट करने की कोशिश करता है, ये समझना बहुत बुनियादी है।
चलिए, ये तो हुई मोटी मोटी बातें, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। विल्सन, खतरों के परिदृश्य यानी थ्रेट लैंडस्केप की बात करते हैं, ये क्या है?
हाँ, मतलब ये समझना कि खतरा कहाँ से आ रहा है, कौन है हमलावर और वो चाहते क्या हैं। वो हमलावरों को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं।
जैसे कि?
जैसे एक तो हैं आम साइबर अपराधी, इनका मकसद सीधा होता है पैसा कमाना।
रैंसमवेयर वाले?
हाँ, रैंसमवेयर फैलाना, जिसमें वो आपके कंप्यूटर या डेटा को लॉक कर देते हैं और फिर उसे खोलने के बदले पैसे मांगते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराना, बैंक अकाउंट खाली करना।
और फिर होते हैं हैक्टिविस्ट?
बिल्कुल, जो किसी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे के विरोध में हैकिंग करते हैं, अपनी बात कहने के लिए वेबसाइट हैक कर लेना या डेटा लीक कर देना।
और सबसे सोफिस्टिकेटेड कौन होते हैं?
वो होते हैं राष्ट्र राज्यकर्ता,
नेशन स्टेट एक्टर्स,
मतलब जो किसी देश की सरकार के इशारे पर या उसके लिए काम करते हैं।
अच्छा, उनका मकसद क्या होता है?
बहुत कुछ हो सकता है, जासूसी करना, दूसरे देशों की संवेदनशील जानकारी चुराना, उनकी टेक्नोलॉजी कॉपी करना, या फिर जरूरत पड़ने पर साइबर युद्ध की क्षमता दिखाना, मतलब दूसरे देश के सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाना।
बाप रे।
और विल्सन एक और खतरे का जिक्र करते हैं, इनसाइडर थ्रेट्स।
हाँ, यानी संगठन के भीतर से ही खतरा।
ये जरूरी नहीं कि कोई जानबूझकर करे,
मतलब अनजाने में भी हो सकता है।
बिल्कुल, कोई कर्मचारी गलती से किसी खतरनाक ईमेल लिंक पर क्लिक कर दे, या अपना पासवर्ड कहीं लिखकर छोड़ दे, या पेन ड्राइव से वायरस ले आए, ये सब अनजाने में हुए इनसाइडर थ्रेट हैं। और हाँ, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं, जो शायद नौकरी से निकाले जाने पर नाराज हों या किसी बाहरी ग्रुप से मिले हों।
ये अंदर के लोगों वाली बात मुझे विल्सन के सबसे जरूरी मुद्दे पर लाती है, मानवीय कारक, द ह्यूमन फैक्टर।
हाँ, ये उनके विश्लेषण का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो कहते हैं कि अक्सर तकनीक से ज्यादा इंसान सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी साबित होता है।
लेकिन क्यों? क्या लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं?
नहीं, जानबूझकर नहीं। विल्सन कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सबके अंदर कुछ मनोवैज्ञानिक झुकाव होते हैं, कुछ तयशुदा तरीके होते हैं सोचने और व्यवहार करने के, जिनका हैकर्स फायदा उठाते हैं।
जैसे?
क्या मतलब है इसका? जैसे फिशिंग को ही ले लीजिए, वो ईमेल या मैसेज जो लगते तो बिल्कुल असली बैंक या किसी जानी मानी कंपनी से आए हैं, पर होते नकली हैं।
हाँ, जिनमें कहा जाता है आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तुरंत यहाँ क्लिक करके वेरीफाई करें।
बिल्कुल, और वो हमारी जल्दबाजी या डर या कभी कभी लालच का फायदा उठाते हैं। हम बिना सोचे क्लिक कर देते हैं और अपना पासवर्ड या दूसरी जरूरी जानकारी दे बैठते हैं।
और सोशल इंजीनियरिंग, वो क्या है?
वो है लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से बहलाना फुसलाना, ताकि वो खुद ही गोपनीय जानकारी उगल दें। फोन करके कोई बैंक अधिकारी बन जाता है, या आईटी सपोर्ट वाला बनकर आपके कंप्यूटर का एक्सेस मांग लेता है।
ओह, विल्सन इसे मानव हैकिंग कहते हैं, है ना?
हाँ, क्योंकि यहाँ तकनीक को नहीं, सीधे इंसान के दिमाग को, उसके भरोसे को, उसके डर को हैक किया जा रहा है।
तो इसका हल क्या है?
विल्सन कहते हैं कि हमें सुरक्षा के सिस्टम ऐसे डिजाइन करने चाहिए जो इंसान की फितरत के साथ काम करें, उसके खिलाफ न जाएं। अगर कोई सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत ज्यादा मुश्किल या उलझाऊ होगी तो लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे या उसका कोई तोड़ निकाल लेंगे।
बात तो सही है। अच्छा, ये तो हुई इंसानों की बात, कंपनियां या बड़े संगठन क्या करें? विल्सन रक्षा में गहराई यानी डिफेंस इन डेप्थ की बात करते हैं, ये क्या चीज है?
इसे आप ऐसे समझ सकती हैं जैसे पुराने जमाने के किले होते थे।
किले? कैसे?
देखिए, किले में सिर्फ एक दीवार नहीं होती थी, पहले एक गहरी खाई होती थी, फिर एक मोटी बाहरी दीवार, फिर शायद एक और अंदरूनी दीवार, जगह जगह पहरेदार, मतलब सुरक्षा की कई परतें होती थी।
अच्छा, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी।
बिल्कुल, साइबर सुरक्षा में भी यही सिद्धांत है, सिर्फ एक फायरवॉल या सिर्फ एक एंटीवायरस पर निर्भर मत रहिए, सुरक्षा की कई अलग अलग परतें बनाइए।
जैसे कि फायरवॉल भी हो, घुसपैठ का पता लगाने वाला सिस्टम IDS भी हो, अच्छा एंटीवायरस भी हो, ईमेल को फिल्टर करने का इंतजाम भी हो, ये सब मिलकर काम करें।
एग्जैक्टली, ताकि अगर हमलावर एक परत को पार कर भी ले तो दूसरी या तीसरी परत उसे रोक ले।
लेकिन ये सुनने में तो काफी जटिल और शायद महंगा भी लगता है, क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है?
देखिए, सिद्धांत तो सबके लिए है, छोटे संगठन भी इसे अपनी क्षमता के अनुसार लागू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सबसे महंगे टूल खरीदें, मुख्य बात है कि अपनी सुरक्षा को कई स्तरों पर सोचें, सिर्फ एक चीज के भरोसे न रहें। लेकिन विल्सन यहाँ एक और अहम बात जोड़ते हैं।
वो
क्या?
कि सिर्फ तकनीक की परतें खड़ी कर देना ही काफी नहीं है।
हाँ, यहाँ पर वो संगठनात्मक संस्कृति वाली बात आती है, सही कहा ना?
बिल्कुल, एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल साइबर सिक्योरिटी कल्चर बनाना बहुत जरूरी है।
इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि कंपनी की लीडरशिप, जो सबसे ऊपर बैठे लोग हैं, वो साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लें। ये सिर्फ IT डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है।
कर्मचारियों की ट्रेनिंग?
हाँ, नियमित रूप से और दिलचस्प तरीके से, ताकि लोग समझें कि खतरे क्या हैं और उनकी भूमिका क्या है, और सुरक्षा को रोजमर्रा के काम का हिस्सा बनाना, और सबसे जरूरी
क्या?
एक ऐसा माहौल बनाना जहां अगर किसी कर्मचारी से कोई गलती हो जाए या उसे कुछ संदिग्ध दिखे तो वो बिना झिझक, बिना सजा के डर के उसे रिपोर्ट कर सके।
हाँ, क्योंकि अगर जल्दी पता चल जाए तो नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है।
बिल्कुल, छुपाने या दबाने से बात बिगड़ती है। अच्छा, मान लीजिए इतनी सारी परतों और अच्छी संस्कृति के बावजूद हैकर कामयाब हो ही गया, कोई सिस्टम हैक हो गया, डेटा लीक हो गया, तब क्या?
यहीं पर विल्सन घटना प्रतिक्रिया यानी इंसिडेंट रिस्पांस की तैयारी पर जोर देते हैं।
मतलब पहले से प्लान तैयार रखना।
हाँ, क्योंकि जैसा हमने कहा, 100% सुरक्षा तो होती नहीं, तो ये मानकर चलना कि कभी ना कभी कुछ गड़बड़ हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या कदम उठाने हैं, इसकी पूरी योजना पहले से तैयार होनी चाहिए।
उसमें क्या क्या शामिल होता है?
उसमें सब कुछ आता है, तैयारी, पहचान कि हुआ क्या है, रोकथाम, नुकसान को फैलने से रोकना, उन्मूलन, हमलावर को सिस्टम से बाहर निकालना, पुनर्प्राप्ति, सिस्टम को वापस ठीक करना, और सबसे अहम पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस यानी घटना से सबक सीखना,
ताकि वैसी गलती दोबारा ना हो।
सही, विल्सन इक्विफैक्स डेटा ब्रीच का उदाहरण देते हैं, एक बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसके करोड़ों लोगों का डेटा लीक हो गया।
हाँ, सुना था मैंने।
जांच में पता चला कि उन्होंने एक जानी पहचानी सुरक्षा खामी को ठीक करने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर पैच समय पर नहीं लगाया था, मतलब बुनियादी चीजों में लापरवाही, नतीजा बहुत भयानक हुआ।
और भविष्य की बात करें तो नई तकनीकें आ रही हैं, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT,
क्वांटम कंप्यूटिंग।
हाँ,
विल्सन इनकी भी चर्चा करते हैं।
तो क्या ये तकनीकें सुरक्षा को बेहतर बनाएंगी या और मुश्किल?
दोनों बातें हैं। देखिए, AI का इस्तेमाल खतरों का पैटर्न जल्दी पहचानने, हमलों को ऑटोमेटिकली रोकने में किया जा सकता है, ये तो अच्छी बात है।
लेकिन
हैकर्स भी तो AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज्यादा चालाक फिशिंग ईमेल बनाने या सुरक्षा सिस्टम की कमजोरियां ढूंढने के लिए AI का उपयोग कर सकते हैं।
और IoT डिवाइसेस जैसे हमारे स्मार्ट TV, स्मार्ट फ्रिज।
हाँ, इंटरनेट से जुड़ी हर चीज, इनमें अक्सर सुरक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कंप्यूटर या फोन में दिया जाता है, तो ये हैकर्स के लिए आसान निशाना बन सकते हैं। सोचिए, किसी का स्मार्ट दरवाजा हैक हो जाए।
अरे बाप रे, और वो सप्लाई चेन अटैक की बात भी करते हैं।
हाँ, और ये आजकल एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा है, सोलर विंड्स हैक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
उसमें क्या हुआ था?
हैकर्स ने सोलर विंड्स नाम की एक बहुत प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर की हजारों कंपनियां और सरकारी विभाग करते थे, उसके एक सॉफ्टवेयर अपडेट में अपना मैलवेयर छुपा दिया।
ओह, तो जब लोगों ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया
तो अनजाने में हैकर्स को अपने सिस्टम में घुसने का रास्ता दे दिया। ये दिखाता है कि अब आप सिर्फ अपनी चारदीवारी सुरक्षित करके नहीं बैठ सकते, आपको ये भी देखना होगा कि आप जिन वेंडर्स या सप्लायर्स पर निर्भर हैं वो कितने सुरक्षित हैं। आपकी सप्लाई चेन भी एक संभावित हमलावर रास्ता है।
ये तो बहुत जटिल होता जा रहा है। तो अगर हम विल्सन की सारी बातों का सार निकालें तो वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो श्रोताओं को जरूर याद रखनी चाहिए?
मेरे ख्याल में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि साइबर सुरक्षा सिर्फ तकनीक का मसला नहीं है, ये एक सामाजिक तकनीकी प्रणाली है।
मतलब तकनीक, लोग और प्रक्रियाएं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं।
हाँ, और समस्या अक्सर इनके बीच के तालमेल में या इस जुड़ाव को ना समझने में होती है।
ठीक है, दूसरी बात?
दूसरी बात, पूर्ण सुरक्षा का लक्ष्य रखना बेमानी है। असल लक्ष्य होना चाहिए जोखिम का समझदारी से प्रबंधन करना।
100% सिक्योरिटी एक मिथक है।
बिल्कुल, ये सोचना कि हम कभी हैक नहीं होंगे, ये गलत है। सोचना ये चाहिए कि अगर हम हैक हुए तो हम नुकसान को कैसे सीमित करेंगे और कैसे जल्दी वापस खड़े होंगे। जैसे आजकल भारत में UPI पेमेंट कितनी तेजी से बढ़ा है।
हाँ, बहुत ज्यादा।
हाँ, तो वहाँ सुविधा और सुरक्षा के बीच वो संतुलन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है।
सही, तीसरा मुख्य संदेश क्या होगा?
तीसरा, अनुकूलनशीलता और लगातार सीखने का महत्व। साइबर खतरे रोज बदल रहे हैं, हैकर्स नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, काम करें ना कि उनके खिलाफ।
खासकर भारत जैसे देश में जहाँ डिजिटल साक्षरता का स्तर बहुत अलग अलग है।
हाँ, वहाँ तो ये और भी जरूरी है कि सुरक्षा उपाय सरल हों, सहज हों, डराए नहीं।
और पांचवा
और आखिरी मुख्य संदेश है कि साइबर सुरक्षा एक सामूहिक प्रयास है, एक साझा जिम्मेदारी है, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी या सिर्फ सरकार का काम नहीं है।
सबको मिलकर काम करना होगा।
हाँ, जानकारी साझा करनी होगी, सहयोग करना होगा। आप सोचिए, आधार जैसे बड़े डेटाबेस की सुरक्षा हो या आने वाले डिजिटल हेल्थ मिशन की सफलता हो,
ये सब इसी सामूहिक भरोसे और जिम्मेदारी पर टिके होंगे।
बिल्कुल।
विल्सन के काम में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं और दिमाग में रह जाते हैं। कुछ ऐसे कोट्स साझा कर सकते हैं?
हाँ जरूर। जैसे एक जगह वो कहते हैं,
साइबर सुरक्षा अभेद्य किले बनाने के बारे में नहीं है, ये ऐसी ढलने वाली प्रणाली बनाने के बारे में है जो हमलों का पता लगा सकती है, प्रतिक्रिया दे सकती है और उनसे सीख सकती है, जबकि जरूरी काम चलते रहे।
मतलब जोर सिर्फ रोकने पर नहीं बल्कि लचीलेपन, रेजिलियंस पर है, झेलकर आगे बढ़ने पर।
बिल्कुल। अटैक होगा ये मानकर चलो, लेकिन सिस्टम ऐसा बनाओ कि वो उसे झेल जाए और सीख भी ले।
एक और विचार जो मुझे बहुत सटीक लगा,
साइबर सुरक्षा में सबसे कमजोर कड़ी तकनीक या लोग नहीं है, ये समझने में विफलता है कि वे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं।
हाँ, ये फिर से उसी सामाजिक तकनीकी सिस्टम वाली बात पर जोर देता है। प्रॉब्लम आइसोलेशन में नहीं, इंटरैक्शन में है।
तकनीक अपनी जगह ठीक हो सकती है, लोग अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, पर उनका तालमेल गड़बड़ है।
सही। और जोखिम प्रबंधन पर उनका नजरिया इस उद्धरण में साफ है।
साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन को ये नहीं पूछना चाहिए कि हम सभी हमलों को कैसे रोक सकते हैं, बल्कि हम किन जोखिमों को स्वीकार करें, किन्हें कम करें और किन्हें दूसरों पर डालें, जैसे बीमा लेकर, इस बारे में समझदारी भरे फैसले कैसे ले सकते हैं।
ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, हवाई किले बनाने के बजाय असलियत को स्वीकार करना।
हाँ, और संगठनों के लिए संस्कृति के महत्व पर यह बात बहुत जबरदस्त है।
साइबर सुरक्षा में संस्कृति रणनीति को नाश्ते में खा जाती है और रणनीति तकनीक को दोपहर के भोजन में।
वाह, मतलब अगर कंपनी का कल्चर ही ठीक नहीं है, लोगों की सोच ही सुरक्षा को लेकर सही नहीं है,
तो आप दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी बना लीजिए, सबसे महंगी तकनीक ले आइए, सब बेकार है, संस्कृति सबसे पहले आती है।
ये सब तो बहुत अच्छी और गहरी बातें हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि हम, मतलब आम लोग, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों को कैसे उतारें? हमारे लिए इसका क्या मतलब है?
बिल्कुल जायज सवाल है। व्यक्तिगत स्तर पर हम इसे पर्सनल साइबर हाइजीन कह सकते हैं। जैसे हम अपनी सेहत के लिए साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने डिजिटल जिंदगी के लिए भी कुछ बुनियादी आदतें अपनाना जरूरी है।
जैसे क्या? कुछ ठोस उदाहरण?
सबसे जरूरी और शायद सबसे आसान भी, अपने सभी जरूरी ऑनलाइन अकाउंट्स, खासकर ईमेल, बैंक, सोशल मीडिया पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA जरूर एक्टिवेट करें।
ये वो होता है ना जिसमें पासवर्ड के अलावा फोन पर कोड भी आता है?
हाँ वही। ये सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ देता है। इसे विल्सन कहते हैं कि आपके घर के दरवाजे पर एक और ताला लगाने जैसा है।
और पासवर्ड्स? वो तो हमेशा कहा जाता है कि मजबूत होने चाहिए।
हाँ, मजबूत हों और हर वेबसाइट के लिए अलग हों। एक ही पासवर्ड सब जगह इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है। अब इतने सारे पासवर्ड याद रखना मुश्किल है, तो उसके लिए पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करना एक अच्छा उपाय है।
ठीक है, और क्या ध्यान रखना चाहिए?
और स्वस्थ संदेह रखना सीखें। हर ईमेल, हर मैसेज, हर लिंक पर आंख बंद करके भरोसा न करें,
खासकर अगर वो बहुत लुभावना लगे या डराने वाला हो।
बिल्कुल। अगर कोई ऑफर सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, या कोई आपको डराकर तुरंत कुछ करने को कह रहा है, जैसे आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा, तुरंत यहां पेमेंट करें, तो रुकें, सोचें, वेरीफाई करें। आजकल भारत में इस तरह के स्कैम बहुत आम हो गए हैं।
हाँ, रोज सुनने में आता है। और डेटा बैकअप?
हाँ, ये बहुत जरूरी है। अपनी जरूरी डेटा, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स का नियमित रूप से बैकअप किसी बाहरी हार्ड ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज पर लेते रहें। अगर कभी रैंसमवेयर का हमला होता है, तो कम से कम आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। ये आपके डिजिटल जीवन का बीमा है।
और अगर हम कंपनियों या दफ्तरों की बात करें, तो वहां क्या किया जा सकता है?
वहां लीडरशिप को साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। इसे सिर्फ IT का काम न समझकर पूरे बिजनेस के लिए जरूरी मानना होगा। कर्मचारियों को सिर्फ साल में एक बार नहीं, बल्कि लगातार दिलचस्प तरीकों से ट्रेनिंग और जागरूकता देनी होगी।
और वो कल्चर वाली बात?
हाँ, एक ऐसा कल्चर जहां गलती मानना या किसी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करना आसान हो, जहां इसके लिए किसी को डांटा या सजा ना दी जाए।
तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा? कौन सी बात सबसे ज्यादा घर कर गई?
मेरे लिए शायद ये एहसास सबसे बड़ा रहा कि साइबर सुरक्षा वाकई में एक साझा जिम्मेदारी है। ये केवल कुछ एक्सपर्ट्स या IT वालों का काम नहीं है, इसमें हम सब की, हर एक व्यक्ति की भूमिका है।
चाहे वो अच्छा पासवर्ड रखना हो,
या किसी फिशिंग ईमेल को पहचानना हो, या अपने ऑफिस में सुरक्षा नियमों का पालन करना हो, हम सब मिलकर ही इस डिजिटल दुनिया को थोड़ा और सुरक्षित बना सकते हैं। ये टीम वर्क है असल में।
और मेरे लिए वो मानवीय पहलू वाली बात सबसे ज्यादा अहम लगी। हम अक्सर तकनीक पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लगता है सारी समस्या वहीं है और समाधान भी वहीं मिलेगा। लेकिन विल्सन हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारी अपनी सोच, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, ये सब कितने मायने रखते हैं। और ये जानना भी मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला था कि साइबर हमले अब सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है। स्टक्सनेट जैसे हमले वाकई में भौतिक दुनिया में नुकसान पहुंचा सकते हैं।
हाँ, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया था उसमें।
तो हाँ, ये डिजिटल और फिजिकल दुनिया की दीवारें अब धुंधली हो रही हैं।
बिल्कुल। और एक बात और साफ है, साइबर सुरक्षा कोई मंजिल नहीं है कि बस पहुंच गए और काम खत्म।
ये एक सफर है।
हाँ, एक लगातार चलने वाला सफर। तकनीक बदलेगी तो खतरे भी बदलेंगे और हमें भी लगातार सीखते रहना होगा, बदलते रहना होगा। आखिरकार ये सब इसलिए है ताकि हम इस डिजिटल दुनिया पर भरोसा बनाए रख सकें।
तो इस ज्ञान गोष्ठी को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह हमारी निर्भरता डिजिटल दुनिया पर बढ़ती जा रही है, उस संदर्भ में व्यक्तिगत गोपनीयता यानी प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच वो सही संतुलन कहाँ पर है, और उस संतुलन को ढूंढने और बनाए रखने में हमारी और समाज की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।